बाबा की याद का अभ्यास करेंगे। मधुबन की भूमि तपोभूमि है। प्यारे बाप दादा का घर सोहम आत्माओं का घर है। तो बाबा जो इतना प्यार करता है, गीत सुना न सबने, क्या कहा बाबा के लिए गीत में, क्या सुना? हाँ बरोबर बोला, ओ दिल के सहारे बाबा। और आगे क्या था? प्राणों के प्यारे बाबा। बाबा दिल का सहारा, प्राणों का प्यारा, ऐसा बाबा जिसको मिले तो वो क्या करेंगे? दिल तुझको प्यार करे, है ना? हमारा दिल भी बाबा को प्यार करेगा ना। तो याद करो बाबा हमारा क्या क्या है और उनसे हमें कितनी प्राप्तियां हैं, जिससे सुख मिलता हो, प्यार मिलता हो, जो हमारा शुभ चिंतक हो, कल्याणकारी हो, हमारे पर रहम करता हो, साथ देता हो, हिम्मत भरता हो, मदद करता हो, तो उसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? हाँ माताएं कैसे याद करेगी? प्यार से याद करेंगे। और भाई कैसे याद करेंगे? हाँ भाई कैसे याद करेंगे? भाई भी प्यार से याद करेंगे। हाँ तो चलो पहला अभ्यास हम करेंगे, तो थोड़ा खुले खुले बैठ जाओ, जो बैठ सकते हो नीचे योग अभ्यास करने तक, फिर भले अपने अपनी जगह बैठ जाना। तो हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए बाबा को याद करेंगे, है ना? ताकि नींद भी ना आवे और अच्छी तरह बाबा के प्यार का अनुभव कर सके। जैसे मैं कहूँ ऐसे करना। मैं जब कहूँ कि राइट साइड घूम जाओ तो घूमना बैठे बैठे, पर आवाज नहीं और मन बाबा की याद में ही टिका हुआ है, मन से नीचे नहीं आना, दिल से बाबा के पास रहना। शरीर हिलेगा, मन स्थिर रहेगा। हो सकेगा हाँ कि शरीर हिलेगा तो मन भी हिल जाएगा? हाँ? नहीं ना? पहला अभ्यास, मैं बाबा की हूँ। बस मैं और किसी की नहीं हूँ। जिससे मैं ढूंढ रही थी वो बाबा मुझे मिल गया। अब मैं केवल उसी की हूँ। इस दुनिया में आए हैं तो निमित्त सबके साथ पार्ट बजाएंगे, लेकिन मैं दिल से एक बाबा की। मेरा ये सौदा पक्का है। मेरा सर्वस्व बाबा है। मैं संपूर्ण रूप से एक बाबा की हूँ। अब मेरी नजर मेरी बुद्धि कहीं भी डूबेगी नहीं। मैं बाबा की दाएं साइड घूम जाइए। बाबा मेरा बाबा आया ही है मुझ आत्मा के लिए। अपने सर्वशक्तियों सहित मुझ पर बाबा न्योछावर है। मैं याद करती हूँ बाबा मेरे साथ हो जाए। कितना सौभाग्य है सब स्वयं भगवान मेरा है। सर्व खजानों का मालिक मेरा है। और क्या मुझे चाहिए? पाना था सो पा लिया, मुझे बेहद खुशी है। मैं बाबा की, बाबा मेरा, दाएं साइड घूम जाइए, सारा विश्व परिवार है। सारा विश्व परिवार है। एक बाबा के बच्चे हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। रूहानी भाई भाई है। न कोई अपना न कोई पराया, हम सब बाबा के हैं। हम एक हैं, एक के हैं। मुझे सबके लिए प्यार है, शुभ भावना। संगम युग में बाबा आकर बेहद का बना देते हैं। कोई भेद नहीं, एक ब्रह्मा बाप के बच्चे भाई बहने। विश्व एक परिवार है। राइट साइड घूम जाइए। हम एक ही वतन के वासी हैं। राइट साइड घूम जाइए। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभूति के अंदर ऐसे डूब गए थे जैसे सारा विश्व बेहद का परिवार, मैं बाबा की, बाबा मेरा, हम सभी के बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता बेन। एक हाथ की ताली से हम सभी स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे।
थैंक यू।
गीता दीदी जी का परिचय प्राप्त करेंगे। गीता दीदी जी, आप मूल रूप से सूरत गुजरात से हैं। 14 वर्ष की कोमल आयु में 1969 में आप लौकिक माता पिता के द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिछले 41 साल से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में बाबा के घर में समर्पित किया। समर्पित जीवन के प्रारंभ में सूरत, भरूच, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि सेवा केंद्रों में आपने अपनी सेवाएं दी। गुजराती में राजयोग शिविर कराने की शुरुआत आपने की है। आपकी इस विशेषता के कारण भारत के अनेक राज्यों में शिविर कराने हेतु आपका जाना हुआ। 79 से 92 तक आपने गुजरात के भावनगर, अमरेली और उसके आसपास के अनेक सेवा केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन किया। 93 से लेकर 2010 तक आपने ज्ञान सरोवर परिसर में आवास निवास विभाग का सुचारू रूप से आपने संचालन किया। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। एक अच्छे वक्ता के साथ साथ आप अच्छे चिंतक भी हैं। तो अभी हम सभी सुनेंगे आदरणीय गीता दीदी जी को। आज का हमारा विषय है संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि। सुनेंगे गीता दीदी को।
ओम शांति। हम सभी इस दुनिया में आए हैं अमूल्य मानव जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि इस जीवन में, मानव जीवन में भी हम सिर्फ लौकिक सांसारिक जीवन नहीं जीते हैं। मैं कहूंगी कि भारत का तो लगभग हरेक नागरिक धर्म और अध्यात्म से जरूर जुड़ता है। भगवान को याद करते हैं और कोई न कोई धर्म संप्रदाय से जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनते हैं, है ना। माताएं कथाएं तो बहुत सुनी है ना, हाँ, भक्ति में कथा सुनते हैं ना, क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में आत्मिक रीति से भी उन्नति करना चाहता है। कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है। देह और देह संबंधों के लिए नहीं, कोई भी सिर्फ लौकिक रीति से जीना नहीं चाहते, लेकिन हरेक आत्मा की ये आंतरिक प्यास रहती है कि मुझे अपनी उन्नति करनी है, जीवन को और श्रेष्ठ महान बनाना है ना? उसके लिए कोई न कोई आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करते रहते। हम सब बाबा के बच्चों का ये सौभाग्य है कि हमें सत्य ज्ञान मिला है। चाहते तो हर एक इंसान है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, आत्म कल्याण हो। हमारे स्वभाव संस्कार अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों, हम ऐसे पुण्य जीवन में कमाएं जो ये जीवन भी सफल हो और नया जो जन्म ले वो भी हमारा श्रेष्ठ है। इसी के लिए लोग पूजा पाठ, भक्ति भजन, भगवान को याद करना ये सब करते हैं, पर उनको सही ज्ञान नहीं। आप देखो द्वापर युग से जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, हरेक मनुष्यात्मा की इच्छा ये रही कि हमारी उन्नति हो, हम विकारों से मुक्त हो, हमारा जीवन पार हो जाए, है ना? इसलिए भगवान को कहते रहते हैं ना, मेरी नैया पार लगाना है ना। कोई इस संसार सागर में डूबना नहीं चाहता है, जीवन को पार लगाना चाहता है, जीवन सफल करना चाहते। तो द्वापर युग से हर आत्मा को ये इच्छा रहती है, न सिर्फ इच्छा, उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत किया, मेहनत तो की न भक्ति में, व्रत उपवास कथा कीर्तन दान पुण्य तीर्थ यात्रा यज्ञ होम हवन क्या नहीं करते, हठ दमन से उपवास क्या क्या करते हैं लोग, है ना? तो हरेक मेहनत करते, पुरुषार्थ करते, लेकिन फिर भी आत्मा की चढ़ती कला नहीं हुई। इच्छा थी, है ना? रोज भगवान को क्या कहते थे, हे भगवान विषय विकार मिटाओ, पाप हरु देवा, ऐसे गाते थे कि नहीं? इच्छा थी, पुरुषार्थ था, लेकिन सत्य ज्ञान न होने के कारण, सतगुरु न मिलने के कारण, सच्चा गाइड नहीं मिलने के कारण, इतनी भक्ति में आत्म शुद्धि के लिए मेहनत की, लेकिन हमारी तो उतरती कला ही होती गई। अब संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब सत्य ज्ञान भी हमें मिला है। हर एक को निश्चय है, हमें सत्य ज्ञान मिला, सच्चा गाइड मिला बाबा, सतगुरु स्वयं हमें मिला। और सबसे अच्छी बात कि संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब हम अपनी जितनी उन्नति करना चाहें, जितनी शुद्धि करना चाहें, जितना श्रेष्ठ बनाना चाहें, हम बना सकते हैं। भक्ति में चाहते थे, मेहनत करते थे, पर समय भी चढ़ती कला का नहीं, सच्चा ज्ञान भी नहीं। अब समय भी चढ़ती कला का, सतगुरु बाबा भी गाइड बना है, सच्चा ज्ञान भी मिला है, है ना? अब अगर हमारा ये लक्ष्य हो कि मुझे अपना संपूर्ण परिवर्तन करना है, हम जानते हैं हरेक कि असली रूप में हम सभी आत्माएं कैसी थी, संपूर्ण पवित्र थे। आत्मा ओरिजिनली कैसी है, सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, है ना? हमारे अनादि गुण कौन से हैं? आत्मा अनादि स्वरूप में कैसी है भाई, बताओ? शुद्ध सोना है, है ना? सतो प्रधान कहते हैं ना, हमारे असली गुण शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, सब आत्मा में समायत। हम ड्रामा में आए पार्ट बजाने, समय और प्रकृति के संसर्ग में आते आते शरीर क्या है, प्रकृति है ना, पांच तत्व है। तो समय और प्रकृति के संसर्ग में आते 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 अब कलयुग अंत में हम बिल्कुल पतित बन गए, तमो प्रधान बन गए, जिसको बाबा क्या कहते हैं, कौन सा वर्ण कहते हैं, हम शुद्र वर्ण में आ गए, बिल्कुल गिर गए, पतित बन गए। अब हम सबका नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म है। ये ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म कहते हैं ना, तो किससे मर गए, पुरानी दुनिया कलियुगी दुनिया से हम मर गए, अर्थात कलियुगी संस्कार स्वभाव से मर गए। कल मुरली सुनी थी ना, अव्यक्त मुरली बाबा की, कल ही बाबा ने क्या कहा था, पुराने संकल्प, पुराने स्वभाव, संस्कार रूपी पुराने संसार से मरना है, है ना? नया जन्म तभी कहा जाएगा ना, कलयुगी पुरानी दुनिया से मर जाना और संगम युगी पवित्र दुनिया में जन्म लेना, ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण जन्म ही तब कहा जाता है जब हम पवित्र बनते। भले हम रोज ज्ञान योग करें, सेवा करें, सहयोग दे, पर जब तक पवित्रता नहीं, ब्राह्मण नहीं कह सकते, ब्राह्मण जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि विकारों के वश जीवन तो शुद्र जीवन है। और ये ब्राह्मण जन्म जिसमें मन वचन कर्म से पवित्र बनते, आहार विहार आचार विचार पवित्र शुद्ध बनाते, और ये ब्राह्मण जन्म भी किस लिए लिया? ब्राह्मण जीवन का भी लक्ष्य क्या है? खुद के लिए लक्ष्य क्या है? देवता बनना। ब्राह्मण जन्म भी किस लिए लिया है? देवता बनने के लिए। सिर्फ ब्राह्मण बनकर खुश नहीं होना है, हमें इतना ऊंचा उठना है, सतयुगी देवता बनना। देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो सोचो, पवित्रता से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है और पहुंचना कहाँ है? संपूर्ण निर्विकारी देवताई स्टेज पर। तो हमें कितना परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं ना, थोड़ा भी पुरानापन रहेगा तो नया रंग बरोबर नहीं लगेगा। आपको तो अनुभव है ना, पुराना रंग लगा हूँ, जंक लगा हूँ, और उसी पर नया लेप लगा दो तो टिकेगा? टिकेगा नहीं, उखड़ जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? पुराना घिस घिस करके निकालते हैं। पता है कितना वो हार्ड पेपर होता है ना, क्या बोलते हैं उससे? हाँ, इससे घिसते हैं। हाँ, वो बाल्टी या दरवाजे, खिड़कियां, सरिये, चीजों पर उनको घिसते हैं ताकि पुराना जो रंग है और जंक है वो निकल जाए, फिर नया रंग लगाओ तो चमकेगा और टिकेगा। तो हमें भी वही अब काम करना करना है कि पुराना बरोबर है। सोच लो, हाँ सोच लिया माता जी? अब हमें भी पुरानापन जो भी है वो घिस घिस कर निकालना है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान और योग की सिरान पर बरोबर घिसना है, और पुरानापन, शुद्रपन, पतितपन, बंदरपना, जो कुछ कहो, बाबा तो मुरली में कहते हैं ना, वो सारा हमें निकालना है। अब हरेक अपने आप में शांति से बैठ के देखो। मधुबन में ये मौका है ना, हमें बिल्कुल शांति है, पवित्र वातावरण है, और सब सभी कामकाज से फारिग होकर यहाँ खास स्व परिवर्तन के लिए आए हैं ना। आपको पता है ना, इस वर्ष जो भी भट्टियां हो रही हैं उसका नाम क्या है? स्व परिवर्तन तपस्या भट्टी। क्योंकि बाबा ने पूरी सीजन में हमें स्व परिवर्तन के लिए कहा। बाबा ने कहा ना, दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मण परिवार की भी बात छोड़ो, स्व का परिवर्तन करके दिखाओ। वैसे तो हम विश्व परिवर्तन के लिए जवाबदार, पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए जवाबदार है, पर बाबा ने कहा चलो वो भी छोड़ो, स्व परिवर्तन करके दिखाओ। तो ये हमें बाबा ने मार्जिन दी है कि हम अपने आप को जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा बना करके दिखावे। बाबा हमसे क्या चाहते हैं, हम कैसे बने, बाबा क्या चाहते हैं? जिन्होंने मुरलियां सुनी है बाबा के सीजन की, उनको पता है हम हरेक से बाबा आप क्या चाहते हैं, हम कैसे बने? भाई बताओ, सब बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। थोड़ा बहुत बनो ऐसे बाबा ने नहीं कहा, फलाने जैसा बनो, इसके जैसा बनो, ऐसा बाबा ने नहीं कहा है। नंबर वन आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना, तो उनके जैसा बनना है, बाबा जैसा हमें बनना है, बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। सबका वही लक्ष्य है, वही है कि थोड़ा बहुत कम चलेगा? हाँ, क्या लक्ष्य? पूछो भाई, अपने आप से पूछो क्या लक्ष्य है? बाबा कौन सी पढ़ाई और पालना दे रहे हैं? बाप समान बनने की। बाबा उस लेवल की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। अब कॉलेज में डॉक्टर बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हो और आप कहो कि मैं तो कंपाउंडर बन जाऊंगा, चलेगा? चलेगा? नर्स बन जाऊंगी, बहुत हो गया, चलेगा? अरे भाई, इतनी पढ़ाई तो डॉक्टर बनने की है, खर्चा तो डॉक्टर बनाने के हिसाब से हो रहा है, और हम अपने मन से निर्णय कर ले कि हम तो नर्स बन जाएंगे या हम कंपाउंडर बन जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होता है ना? तो बाबा की इस यूनिवर्सिटी में हम सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई तो कौन सी है? बाप समान बनने की है ना, तो इसलिए हम सबको इसी लक्ष्य से बाबा पढ़ाते हैं, दादियों द्वारा, यज्ञ द्वारा, हमारे बड़े भाई बहनों के द्वारा। पालना तो वही लेवल की बाबा कर रहे हैं, तो हम सबका भी ये जिगरी लक्ष्य हो कि मुझे भी बाबा जैसा बनना है। बाबा कहते हैं ना, 200 नाखूनों का जोर लगाओ, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं। बीसों नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा ने कहा बाप समान बनने की लहर फैलाओ, क्योंकि कई बाबा के बच्चे अपना मन मना के बैठ गए कि इतना बहुत हो गया। हम पवित्र रहते हैं, शुद्धन खाते हैं, हम रोज क्लास में जाते हैं, हम पिक्चर होटल में नहीं जाते हैं, हम सेवा करते हैं, हम बहुत अच्छे हो गए, ऐसे तो नहीं संतुष्ट हो गए क्या? हाँ देखो बरोबर जवाब नहीं देते हैं, कहाँ गई बहने, भाई बहने कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या विचार है? बढ़ना है ना आगे। हाँ हाँ आगे ही आगे बढ़ना है ना। बाबा कहते ना थोड़े में राजी होने वाले नहीं, वारिस बनना है। अगर अभी मान लो हम आपको हलवा देते हैं, किसी को एक चम्मच दूं और किसी को कटोरी भर के दूं तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ आप सोचेंगे ना, देखो इसको तो कटोरी कटोरी में भी देखेंगे, इनको तो बड़ी कटोरी भर के दिया, मेरे को छोटी दी। उसमें हम थोड़ी ऐसा चाहेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर बाबा से जो वर्षा लेना है उसमें भी पूरा लेना है ना। क्यों लक्ष्य हमें ऊंचा श्रेष्ठ रखना है? क्योंकि ऊंचा लक्ष्य होगा तो संपूर्ण परिवर्तन करेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत सुधार करके हम खुश हो जाएंगे कि हम तो दुनिया वालों से बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं, हमारा लक्ष्य बताया ना, देवता बनना माना बाप समान बनना है ना, हमें संपूर्ण परिवर्तन कर, मोटा मोटा परिवर्तन नहीं, बाहरी परिवर्तन नहीं है ना, हमें अपने आंतरिक सूक्ष्म संस्कार स्वभाव वृत्ति दृष्टि स्मृति सब में परिवर्तन करना है ना। देखो ये मैंने बाहरी परिवर्तन किया कि मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, तो इससे पूरा हो गए? सफेद कपड़े पहन लेने मात्र से थोड़ी होता है, सफेद तो बगला भी होता है, है ना? संस्कारों से बदलना है ना, आदतों से बदलना। अब हम रोज समझो लोगों को हम यही तो समझाते हैं ना कि भई आप रोज मंदिर जाते हो सत्संग करते हो, पर घर आकर भी रोज गुस्सा भी करते हो तेरी मेरी भी करते हो, तो क्या फायदा? ऐसे लोग उनको हम समझाते हैं ना कि अपने में तो कोई परिवर्तन किया नहीं, तो वही बात हमें अपने पुरुषार्थ में भी लगानी है ना, कि बाबा से डायरेक्ट भगवान से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं सत्य ज्ञान और योग के, भगवान का रूहानी प्यार हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें संपूर्ण परिवर्तन करके दिखाना है, जिसको बाबा कहते हैं कि अंश वंश भी न रहे, अंश रहेगा तो फिर से वंश रहेगा। बीमारियों में कहते हैं ना कि भाई इसको थोड़े जम्स रह गए फिर से बीमारी का अटैक हो गया, ऐसे कहते हैं ना, तो विकार अवगुण बुराई जो भी कहो अज्ञानता के कारण देहभान में आने के कारण जो भी हमारे अंदर बुराइयां आई, मोटे मोटे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाबा कहते हैं ना, मोटे रूप में से तो ज्ञान में आने से परिवर्तन हो जाता है, है ना। देखो आप ज्ञान में आए तो ज्ञान समझ में आ जाता है, और भगवान पढ़ाते हैं ये निश्चय जब हो जाता है तो हमारे में तुरंत परिवर्तन आता है। तो पहला परिवर्तन हम सब ने क्या किया, जीवन पवित्र बनाया, शुद्ध आहार खाते हैं, गंदे पिक्चर नहीं देखते हैं, फैशन नहीं, कोई व्यसन नहीं, निंद्रा जीत बनते हैं, है ना। ये सब परिवर्तन हम पहले कर लेते हैं, है ना। ज्ञान में समझ में आते ही ये परिवर्तन हम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फेज, पहला लेवल है, वो प्राइमरी परिवर्तन है, क्योंकि इस परिवर्तन के बाद ही देवता बनने की पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना, भी मेडिकल लाइन में जाना है तो आपके 85% मार्क्स आने चाहिए, ऐसा है ना। आजकल दुनिया में तो कितने परसेंटेज चाहिए, भाई इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आप जो ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीकॉम होते हैं, उसमें आपके इतने परसेंटेज आवे तो स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, है ना। तो देवता बनना है तो ब्राह्मण जीवन में भी इतना परसेंटेज आना चाहिए, ब्राह्मण बनेंगे तो देवता की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो ये परिवर्तन हम सबने किया है, किया है, हाँ मैं मान लूं किया है सबने, हाँ मान लूं ना, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ बाबा के बच्चे मधुबन आए हैं, माना ये तो हमारा प्राथमिक परिवर्तन हमने कर लिया है, पर हम हरेक महसूस करते हैं, क्योंकि रोज बाबा कितना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं, तो थोड़ा बहुत अंश वंश रूप में अभी भी है। बाबा कहते हैं ना, मोटे रूप से क्रोध नहीं करते हैं, पर अंदर अंदर कुड़ते रहना, मन में ही लड़ते रहना, करते हैं ना, मन ही मन लड़ते रहते, मन ही मन मार के भी आते हैं, ये मन से कुड़ना कहते हैं ना, भी नाराज हो जाना, वो भी एक प्रकार का गुस्सा है, बोलना नहीं, रूठ जाना, किसी का घृणा तिरस्कार नफरत करना, ये सब क्या है, क्रोध के ही तो अंश है। कर्म में नहीं, पर मनसा वाचा दृष्टि में वृत्ति में बात आ गई तो वो अंश तो अंदर है ना, तो वो ज्ञान और योग की शक्ति भरती नहीं है हमारे में भी, क्योंकि अंदर अभी भी है ये। चलो ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं, बाबा के बच्चे बने, पवित्र जीवन जीते, पर अगर हमारी बुद्धि मन से भी विकारों में जाती है, वासना में जाती है, कोई शरीर के आकर्षण में जाती है, कोई से हमें लगाव हो जाता है, कोई हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्शन होता है, तो ये सब क्या है, काम विकार है, काम विकार का ये सूक्ष्म अंश है। शायद आज की ही मुरली में बाबा ने लास्ट में कहा कि फैमिलियरिटी स्वप्न में भी ये नहीं होना चाहिए, है ना। आकर्षण होना देहधारियों का, देह का ये विकार है, इस प्रकार लोभ लालच, है ना, छोटी मोटी चीजों की लोभ लालच रहती है ना, मोह देह में, देह संबंधों में। बाबा कहते हैं माताओं को पुत्रों में बहुत मोह होता है, हा? पहले पति बच्चों में होता है, बूढ़े होने के बाद पोतरे में धोतरे में बहुत मोह होता है। व्यक्ति कहीं भी अटैच होगा तो योग किससे लगेगा, हा? जहां अटैचमेंट होगा वहां ही योग लगेगा। कितना भी आप मुख से बाबा बाबा करो, आपका बाबा से योग कभी नहीं लगी। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। बाबा भी प्यारा पर मेरा फलाना भी प्यारा, दो नहीं बैठ सकते हैं, मन में एक ही बैठ सकता है। तो चेक करो कोई और तो नहीं बैठा है अंदर, हा? अहम, बाबा कहते हैं ना पहले धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, रूप का अभिमान, पढ़ाई का अभिमान, है ना। अब वो अभिमान तो खत्म हो गया, पर किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को योग का अभिमान, मेरे जैसा योगी कोई है नहीं, हाँ मैं ही क्लास में सबसे पहले आती हूँ, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर अभिमान तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बहुत सेवा करती हूँ सेंटर में, सेवा का अभिमान आ जाते, मेरे सिवाय प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, मेरे को ही माइक चलाना आता है, होता है ना सेंटर में, तो सेवा का अभिमान आ जाता है, सहयोग का अभिमान आ जाता है ना। मैं बहुत बाबा के काम में सहयोग करता हूँ, धन से मदद करता, तो अभिमान आता है। बाबा कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए, अभिमान तो अभिमान है ना, कोई भी बात का गिराएगा। जिस गुण का अभिमान आया वो गुण अवगुण हो जाएगा, वो अवगुण हो जाएगा, वहां से हमारा गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये तो पांच बड़े विकार, पर और सब सोचो, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन और उनके छोटे छोटे कितने अंश, तो चेक करना है, स्व परिवर्तन करना है ना। तो स्व परिवर्तन माना किसमें परिवर्तन, स्व माना मैं माना आत्मा, मुझ आत्मा में अपने स्वभाव, संस्कार, आदतें, वृत्ति, दृष्टि, उसमें मुझे परिवर्तन करना है। बराबर, तो अब एक मिनट साइलेंस में बैठना है और अपनी डायरी में लिखो कि मुझे अभी भी किस बात में परिवर्तन करना बाकी है। अपने आप को तो हर एक खुद ही जान सकता है ना। मुझे सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, मैं खुद, मेरे साथ रहने वाले माँ बाप, भाई बहन, शिक्षक मुझे बाहर से जानेंगे ना, पर मेरी अंदर से वृत्ति, दृष्टि, स्थिति, संस्कार क्या है वो तो मैं खुद ही जान सकती हूँ ना। इसलिए हमें खुद ही गहराई से स्वदर्शन करना होगा, स्व चेकिंग करनी होगी, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं बदलते कर्म नहीं बदलते, है ना? देखो मैं आपको डांटूंगी या ज्ञान सुनाऊंगी, कुछ कहूंगी कि देखो आप बहुत शोर करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ठीक है दीदी, दीदी दो दिन चुप रहेंगे, फिर चार दिन के बाद वापस शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक आदत नहीं बदलती, संस्कार नहीं बदलते, वो फिर कर्म में आता रहेगा, है ना। जैसे देखो, हम घास काट देते हैं, है ना, गर्मी में पूरा ग्राउंड साफ लगेगा, पर जैसे ही बारिश होगी घास फिर से उग उठता है। हम सोचेंगे हमने तो पूरा घास काट दिया था, ये फिर कहां से उग कर आया, क्यों उगा वापस? क्योंकि हमने जड़ से नहीं निकाला था, हमने तो ऊपर काट दिया था, तो फिर मौसम मिलते ही वापस उग उठा। इस प्रकार अगर हम ऊपर से मोटे रूप में परिवर्तन कर देते हैं, पर फिर अगर ऐसा संग में आ जाते, कोई ऐसे वातावरण में चले जाते, तो फिर वो आदतें वापस कर्म में आ जाती आती है ना। कि वैसे तो मैं शांति से ही बात करता हूँ, पर उसने ऐसा बोला ना, इसलिए गुस्सा आ गया। ऐसे बोलते हैं ना हम, तो भाई क्यों, कहाँ से आ गया? माना मैंने अंदर से परिवर्तन नहीं किया था, तभी वो संस्कार फिर जागते रहते हैं, है ना। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 25 साल, 40 साल के बाद भी वो संस्कार जाग कर आ जाता है, क्योंकि अंदर अभी भी अंश है, इसलिए ये हो रहा है। तो ये रूट से, जड़ों से परिवर्तन होना चाहिए। बीमारी में भी कहते हैं ना, भी जब तक जड़ परख में नहीं आता, तब तक रोग का उपचार ठीक नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। हाँ, पांव दुख रहे, पर कारण कहाँ है, है ना? कारण कहीं और मिलता है। सिर दर्द हो रहा है, पता करते हैं तो पता चलता है पेट ठीक नहीं है, ना? तो बीमारी यहाँ दिखती है, पर कारण यहाँ है ना? तो हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि भाई अभी भी कौन सा ऐसा संस्कार है मुझ आत्मा में जो अभी भी नहीं बदला है। हर आत्मा में कोई ना कोई कड़ा संस्कार होता है, जिसके कारण ही तो हम जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं। मोटा मोटा परिवर्तन तो 7 दिन में ही हो गया था, इतना वर्ष हम निरंतर पुरुषार्थ क्यों करते? क्योंकि जो कड़े संस्कार है ना, वो अभी भी हैं, गए नहीं हैं, बार बार जाग जाते हैं। इसलिए हमें खुद देखो अपने आप में कि अभी भी ऐसा कड़ा पुराना संस्कार कौन सा रह गया है जो मेरे पुरुषार्थ में विघ्न डालता है, सेवा में विघ्न डालता है। होता है ना, वो आदत, वो संस्कार हमें ऊपर से नीचे गिराते हैं। वो सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, ऊपर चढ़ जाते हैं, पर एक ही गड़बड़ हो गई, वापस नीचे। तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ, पर वो एक ही संस्कार के वश वापस अवस्था साधारण बन जाती है, नशा उतर जाता है, विघ्न आ जाता है, है ना? हमें खुद महसूस होता है कि ये क्या मेरे में वही फिर पुरानापन आ गया। जो ज्ञान योग का लेप लगाया था वो उतर गया, वही पुराना संस्कार फिर जाग गए। कहानी पता है ना, एक कहानी सुनाती हूँ कि एक गधा था, वो खेत में घुस के खाता था, पर खाने के बाद उसको वो पकड़ा जाता था तो उसको बहुत पीटते थे। इसलिए उसने सोचा कि लोग शेर से डरते हैं, इसलिए मैं शेर का चमड़ा ओढ़कर खेत में घुसता। वो शेर का चमड़ा ओढ़कर खेत में घुस गया, अच्छी तरह खाया पिया, पेट भर गया। तो क्या उसकी आदत है तो वो ऊंची ऊंची करने लगा, तो पकड़ा गया। लोगों ने कहा, अरे भाई ये तो बनावटी है, बाहर से शेर है, ये तो अंदर से तो गधा है। तो लोगों ने पकड़ा और फिर से पीटा तो हमारा कहीं ऐसा तो नहीं अंदर से भाई सफेद कपड़े तो पहन लिए, बैज तो लगा लिया पर कहीं अंदर से ऐसा तो नहीं है तो ये निकालना है। उसी का ही तो पुरुषार्थ है ना, वही पुरुषार्थ है, वरना आप पुरुषार्थ क्या करते है ना। जो चीजें छोड़ दी वो तो गई, पर अभी भी अंश वंश तो वो क्या है, आप में कौन सा कड़ा संस्कार है? तो एक मिनट शांति में बैठते हैं और डायरी में लिख लो फिर। किसी को दिखाना नहीं है और ना देखना, एक दो की डायरी में देखना नहीं, ये तो खुद के लिए लिखना है। खुद नहीं लिखेंगे और देखेंगे इसने क्या लिखा है खुद खुद का देखना, दूसरों की चिंता नहीं करो। बाबा ने कहा ना, दूसरों को मैं देख लूंगा, तुम अपना कर लो तुम निश्चिंत रहो। इसलिए बाबा इतनी सुविधा हमें देते हैं स्व परिवर्तन के लिए कि तुम एक ठीक हो जाओ सारा ड्रामा ठीक हो जाएगा। क्योंकि ड्रामा के सारे हीरो ही बिगड़ गए तो पूरा ड्रामा ही बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि सारे हीरो एक्टर बिगड़ गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बस एक आप ठीक हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। और ये सत्य है, विश्व की 700 करोड़ आत्माओं में हम 9 लाख सिर्फ हीरो एक्टर हैं। इसलिए ड्रामा को ठीक करने के लिए बाबा हम सबको ठीक कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी कौन सी है। शरीर के भी नॉलेजफुल बनना है, जैसे हर एक को अपने शरीर का नॉलेज है ना, कि देखो मैं ये खाऊंगी मुझे शूट नहीं करेगा, पता है ना सबको, मैं ये खाऊंगी तो मुझे ये हो जाएगा, भाई मैं देखो शॉल नहीं ओढ़ूंगी मुझे जुकाम हो जाएगा। तो हरेक अपने शरीर को जान गए हो ना, खुद को जान गए हो, खुद की बीमारी कौन सी है देखो और लिखो। बाबा की तुलना में खुद को देखो कि अभी भी मेरे में कौन से अवगुण हैं, बुराई है, संस्कार है, आदतें हैं। अभी भी मैं गुस्सा करती हूँ, झूठ बोलती हूँ, ईर्ष्या है, अहम है, मुझे देहधारियों का आकर्षण होता है, गंदे विचार आते हैं, मुझे नाम मान शान की इच्छा रहती है, क्या है? अभी भी मोह है, लोभ लालच होती है, देखो क्या है। कहां मैं अटकी हुई हूं, वो लिखो। संगम युग में मौका है संपूर्ण परिवर्तन करने का, और युग में हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। अभी ही हम स्व परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सत्य ज्ञान, अभी भगवान की शक्ति हमारे साथ है, अभी समय चढ़ती कला का है। तो मैं टोटल परिवर्तन कर सकती हूं, तो मैं कहां अटकी हुई हूं। हम कहते हैं ना, वैसे हर बात में मैं ठीक हूं, बस एक ही थोड़ा मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसे बोलते रहते हैं ना, वो कौन सा है, वो देखो। क्योंकि अब हम बड़े हो गए ना, देखो बच्चा हो तो माँ बाप उनको सुधारते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं। युवा है, पढ़ता है, टीचर्स उनको ठीक करते रहते हैं, है ना? पर जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर खुद हम जीवन के मालिक हो जाते हैं, फिर कोई हमें कुछ कहता नहीं, क्योंकि हर कोई समझते हैं कि ये तो बड़े हैं, इनको थोड़ी कह सकते। हम खुद अपने जीवन के मालिक हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां सुधरने की जरूरत है, मेरा कौन सा संस्कार है जिसके कारण मैं भी दुखी होती हूँ, मेरे साथ जो रहते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, लौकिक घर में भी डिस्टर्ब होते हैं, सेवा में भी मेरे कारण विघ्न आते हैं, पुरुषार्थ में जिसके कारण मैं गिर जाती हूँ, ढीली हो जाती हूँ, नशा उतर जाता है, वो कौन सा संस्कार, वीकनेस कौन सी है? यहाँ तो हर एक खुद डॉक्टर है ना, हम हर एक ज्ञानी आत्मा है, हमें खुद चेक करना है। लिख लिया, मिल गई बीमारी, किस किस को मिली अपनी बीमारी, मिल गई ना भाई, क्योंकि आईना साफ है, बाबा साफ आईना है हमारे सामने। बाबा मुरली में कहते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी, ये चेहरा तो रोज चार बार देखते रहते हैं, आजकल तो बार बार देखते हैं, पर्स में ही आईना रखते हैं, घड़ी घड़ी देखते हैं, घड़ी घड़ी मुंह ठीक करते हैं, पोछते हैं, क्रीम लगाते, पाउडर लगा, आजकल तो पर्स में सब सुविधा है, हा? तो बाबा कहते ये आईना भी तो रखो ना, स्व को देखना। जब तक हमें समझ नहीं संस्कार कौन से बदलने हैं मुझे, तो पहला है ज्ञान चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपने में क्या परिवर्तन करना है, पहले तो वो पता होना चाहिए। क्यों परिवर्तन करना है वो सारा मैंने समझाया, बताया ना सारा, समय क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या बनना है, तो उस हिसाब से पर बदलना जरूरी है। तब मुझे स्व में क्या परिवर्तन करना है, ताकि हमारे घर वाले, हमारे साथ रहने वाले, नौकरी करने वाले, अड़ोस पड़ोस वाले कहे, अब ये सच्ची बदली है, हाँ, क्योंकि हर एक हमें जानते हैं ना, ये जाते तो है वहां, परंतु हमारे साथ दिन रात जो बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन रहते, वो तो हमें जानते हैं ना। वो कहे कि अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां सच में पूरे तपस्वी बन गए, ये ज्ञानी है, सेवादारी है ये कहते, पर ये पूरे योगी बन गए हैं, है ना? वो ये अंदर सूक्ष्म परिवर्तन होगा ना, तब हम ये सर्टिफिकेट ले सकेंगे। अब दूसरा जो आपने लिखा ना, स्व परिवर्तन मुझे क्या करना है, अब उसको गहराई से रियलाइज करो, महसूस करो कि अगर ये सुधार में नहीं करूंगी तो मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, नंबर पीछे चला जाएगा। कहते ना, एक बस एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए, क्या फायदा भाई, छह में पास हो गया पर एक में सिर्फ फेल हुआ, फेल। तो हम भी ऐसे कहते हैं ना, वैसे तो मैं सब बात में ठीक हूं, बस एक थोड़ा सा मेरा स्वभाव है ना, मैं बोल देती, बस उसी से नंबर गया, राजा नहीं बन सके। तो महसूस, रियलाइजेशन चाहिए। मैंने देखा कई बार हम अपनी कमजोरी चलाते रहते, चलता है क्या है, थोड़ा ही तो है, इतना ही है ना, हो जाएंगे, बन जाएंगे, कौन संपूर्ण बना है, हरेक में कुछ ना कुछ तो है ना, तो मेरे में भी करके हम अपने को चलाते रहते, टालते रहते हैं बात को। स्टोव में एक ही छेद, कितने पंप मारते रहो हवा भरेगी, भाई मैं तो इतना पंप मार रही हूँ हवा नहीं भर रही, पर एक ही लीकेज है, सारी मेहनत बर्बाद। पूरी नाव अच्छी है, एक ही छेद है, चलेगा? हाँ, कहते हैं ना, एक ही छेद पूरी नाव को ले डूबता है। तो एक ही गलत संस्कार, आदत हमें पीछे कर देगी, हमारे किए करे पुरुषार्थ पर पानी फेर देगी। बाबा कहते हैं ना, समय पर उस कमजोरी के कारण फेल हो जाओगे, वो कमजोरी ही माया के आने का दरवाजा बन जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं समझो वो एक है, कहते ना, एक ही ईंट कच्ची है, पूरा किले को, वहां से दुश्मन को आने का रास्ता मिल जाएगा। एक ही ट्रेटर होता है सेना में, वो सारी बातें फोड़ देता है, दुश्मन घुस जाते हैं। एक कमजोरी, एक ही कमजोरी, सीता ने सिर्फ एक अंगूठा बाहर निकाला, लक्ष्मण रेखा के बाहर, और कहानी में क्या सुनाते, पूरा उठा के ले गए, पूरी बाहर थोड़ी निकली थी, अभी तो सिर्फ अंगूठा ही बाहर निकला। इसलिए बाबा कहता है ये मौका है, मौका है, हम पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं करेंगे हमारा, हमें ही नुकसान होगा ना, हमारे लिए विघ्न बन जाएगा। तो महसूस करो कि एक कमजोरी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, मेरे सारे किए करे पर बात भी तो करते हैं ना, 99 गुण है पर एक अवगुण इसमें ऐसा है, पानी फिर देता है कि ये करा मिट्टी में, उसी के कारण तो हम अटके हैं, वरना हम फरिश्ता नहीं हो जाते। इसलिए अभी भी बाबा कहते हैं जिगरी। अब तीसरी बात, पहला समझ ज्ञान, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा पुरुषार्थ। दृढ़ता से उस बुरे संस्कार को बदलने के लिए कौन सा गुण, कौन सी शक्ति मुझे धारण करने का पुरुषार्थ करना है वो निकालो। भाई क्रोध आता रहता है, मैं गुस्से होता रहता हूं, तो बाबा कहते हैं खुद में शांति प्रेम भरो। कहते हैं भाई इस विटामिन की कमी के कारण ये बीमारी हो गई, तो वो विटामिन की गोलियां खाते हैं ना, तो ये विकार भी क्या है, कोई ना कोई गुण शक्ति की कमी के कारण हो जाता है। अगर मुझे अभिमान आ जाता है या डिप्रेशन आ जाता है, इसका कारण क्या है कि मैं स्वमान में नहीं टिका हूं, इसलिए या अभिमान में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे देह का आकर्षण होता रहता है, इसका कारण मैं शुद्ध आत्मा की स्मृति में नहीं हूं। मैं बार बार अपने को याद कराऊं, रियलाइज करूं कि मैं ओरिजिनली शुद्ध हूं, सत्य हूं। बाबा कहते हैं ना, जो लोभ करेगा भाग्य नहीं बना सकेगा। तो महसूस करो क्यों मैं लोभ करती हूं, संतुष्टता नहीं, जीवन में क्या प्राप्त करना चाहिए वो स्पष्ट नहीं, इसलिए धन साधन के पीछे पड़ते हैं। अच्छा चरित्र, अच्छे संस्कार सबसे बड़ा धन है। कमी कौन सी है और उसके लिए कौन सा गुण और शक्ति मुझे धारण करना है, वो रोज बाबा के सामने बैठकर पक्का करना है। तो ये संस्कार बदलते हैं तब हमारा व्यवहार दिव्य बनता है। ठीक है, समय हो चुका है, अब आप खुद गहराई से इस बात पर महसूस करना और वो पुरुषार्थ का खास प्लान बना, क्योंकि हरेक कोई एक बात में, हरेक पढ़ने में भी कहते हैं ना भी, वैसे सिर्फ मेरा मैथ्स बहुत कच्चा है, गणित है ना बहुत कच्चा है, मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना वो कच्चा है, तो एग्जाम के टाइम उनको उसी सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी होगी ना। तो अब हमें भी जो हमारी कमजोरी है उनको खत्म करने वाले गुण शक्ति को धारण करने वाला विशेष पुरुषार्थ करना होगा। ओम शांति।
ओम शांति। समझ, महसूसता और पुरुषार्थ, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे संस्कारों को बदलने की नींव है, फाउंडेशन है। बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में संस्कार परिवर्तन की विधि हम सभी को आदरणीय बहन जी ने बताई, आज से ही उस विधि को व्यवहार में लाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आए ही क्यों हैं बाबा के घर में, अपने आप को बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी जी का, फिर से एक हाथ की ताली से, प्रसन्न चेहरे से हम दीदी जी का अभिवादन करते हैं।
थैंक यू।
एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर आज याद रहे साइलेंस डे है, मौन में